ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के छठे स्कंद के दसवें अध्याय के 17 श्लोक पर हैं और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन सारे वर्सेस में कोई तात्पर्य नहीं है तो सिर्फ इनका अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद 28 नंबर के श्लोक को हम लोग उच्चारण करेंगे। तो 17 का ट्रांसलेशन है और यहाँ पर जो ये कथा चल रही है देवताओं तथा वृतासुर के मध्य युद्ध। हे राजन, जब वृतासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्वनी कुमारों, पितरों, भइयों, मरुतों, ऋभुओं, साध्यों तथा विश्व देवों से घिरा हुआ है और इस प्रकार से दीप्यमान है कि उसका तेज असुरों के लिए असह्य था। किसका तेज? इंद्र का। इसके बाद सैकड़ों हजारों असुरों, यक्षों, राक्षसों, मनुष्य भक्षकों तथा सुमाली, माली आदि अन्यों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था। असुरों में नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकु, शिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, उलोम, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजेय असुर स्वर्णाभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे और गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुदगर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। बर्छों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों तथा शतघ्नि एवं भुशुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि किन तक नहीं पहुंच पाई? देवताओं की सेना तक। जो असुरों ने हथियार फेंके वो बादलों की तरह देवताओं के ऊपर छाए और देवता दिख नहीं रहे थे, और लेकिन वो बाण और वो सब चीजें देवताओं तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में इन हथियारों को काटकर खंड खंड कर दिया। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र चुक गए मतलब समाप्त हो गए, खत्म हो गए, तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष तथा पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया। किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। जब वृत्रासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्रास्त्रों के समूह से यहां तक कि वृक्षों, पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके हैं और अक्षत बने हुए हैं, तो असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। अब हम लोग श्लोक 28वें का उच्चारण करेंगे। सर्वे प्रयास अभवन विमोगा, कृता कृता देवगणेषु दैत्ये, कृष्णा अनुकूलेषु यथा महत्सु, शूद्रै प्रयुक्ता उशतिरुक्षवाच, सर्वे समस्त प्रयासा प्रयत्न अभवन हो गए, विमोघा निष्फल, कृता किया हुआ, कृता पुनः किया गया, देव गणेशु देवताओं में, दैत्य असुरों द्वारा, कृष्ण अनुकूलेशु जो श्री कृष्ण द्वारा सदैव रक्षित है, यथा जिस प्रकार महत्सु वैष्णवों को शूद्रें तुच्छ मनुष्यों द्वारा प्रयुक्ता प्रयुक्त उशति प्रतिकूल रुक्ष कठोर वाच शब्द। अनुवाद एवं तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। तात्पर्य बांग्ला में कहावत है कि गीध के शाप से गाय नहीं मरती, इसी प्रकार कृष्ण के भक्तों पर आसुरी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवता श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः असुरों के शाप निष्फल रहे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಇಸ್ ಭಾಗವತಂ ಕೆ ಛಠೆ ಸ್ಕಂದ ಕೆ ದಸವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಜಿಸ್ಕಾ ಕಿ ಶೀರ್ಷಕ ಹೈ ದೇವತಾಂ ತಥಾ ಮೃತಾಸುರ ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ. ಇಸ್ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗ 17 ಸೆ ಲೇಕೆ 28ವೇ ಶ್ಲೋಕ ತಕ್ ಕೆ ಊಪರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರೆಂಗೆ, ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ, ಔರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಕೋ ಮಾನತೆ ಹುಏ ಹಮ್ ಲೋಗ ಥೋಡಾ ಸಾ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಕರೆಂಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ದುಬಾರಾ ಸೆ ದೇಖೆಂಗೆ ಕ್ಯಾ ಪಿಛೆ ಕಥಾ ಚಲ್ ರಹೀ ಹೈ, ತಾಕಿ ಸಬ್ ಲೋಗ ಜೋ ಕಿ ನಹೀ ಥೆ ಪಿಛ್ಲೆ ಪ್ರವಚನೋ ಮೇ ತೋ ಉನ್ಕೋ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಕಿ ಯೇ ಇಂದ್ರ ನೆ ಸಬ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೀ ಹೈ ಕಿ ಅಪ್ನೆ ಗುರು ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ್ ನಹೀ ಕಿಯಾ, ಉನ್ಕೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಉನ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ನಹೀ ಕಿಯಾ ಅಪ್ನಿ ಸಭಾ ಮೇ. ತೋ ಇಸ್ ಕಾರಣ ಸೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜೋ ಥೆ ಉನ್ಕೆ ಗುರು ವೋ ಥೋಡೆ ನಾರಾಜ್ ಹುಏ, ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಕುಛ ನಹೀ ಕಹಾ, ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಚಲೇ ಗಯೇ. ಔರ್ ಜಬ್ ವೋ ಚಲೇ ಗಯೇ ಎನೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋ ಜಬ್ ವೋ ಚಲೇ ಗಯೇ ಠೀಕ್ ತೋ ಜಬ್ ವೋ ಚಲೇ ಗಯೇ ತೋ ಗುರು ಕಾ ಅಪಮಾನ ಗುರು ಕಾ ಅಪರಾಧ ಬಹುತ್ ಗಂಭೀರ ಹೋತಾ ಹೈ. ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಭೀ ಗಂಭೀರ ಹೈ, ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಗುರು ಅಪರಾಧ ಬಹುತ್ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಹೈ. ತೋ ಉಸ್ ಅಪರಾಧ ಮೇ ಉನ್ಕಿ ಸಬ್ ಶಕ್ತಿ ಶೀರ್ಣ ಹೋಗಿ ಔರ್ ವೋ ದೈತ್ಯೋ ಸೆ ಹಾರ ಗಯೇ. ಔರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಬ್ ವೋ ಅಪ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಕೋ ವಾಪಸ್ ಲೇನೇ ಕೇ ಲಿಯೆ ಉಧರ್ ವೃತ್ತಾಂತ ಯೇ ಭೀ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ಇಂದ್ರ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಸಾರೆ ದೇವತಾ ಮಿಲ್ ಕೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಪಾಸ್ ಗಯೇ ಔರ್ ಉನ್ಸೆ ಕಹಾ ಕಿ ಹಮಾರಾ ಕೈಸೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ವೃತಾಸುರ ಜೊ ಥಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉಧರ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಕಿ ಜಬ್ ಇಂದ್ರ ಕಾ ರಾಜ್ಯ ವಗೈರಾ ಸಬ್ ಚಲಾ ಗಯಾ ತೋ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸೆ, ಪೂಛಾ ಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾ ಕರನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನೆ ಕಹಾ ಭೈ ಐಸಾ ಕರೋ ಕಿ ತುಮ್ ಲೋಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕೋ ಲೇ ಲೋ, ಔರ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ಜೊ ಹೈ ತ್ವಷ್ಟಾ ಕಾ ಪುತ್ರ ಹೈ, ಔರ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಮಾರೇ ಲಿಯೆ ಹವನ್ ಕರೇಗಾ, ಹವನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಜೊ ಹೈ ವೋ ತುಮೇ ಜೀತನೇ ಕೆ ಲಿಯೆ ತುಮಾರಿ ವೋ ಸಹಾಯತಾ ಕರೇಗಾ. ತೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ಜಬ್ ಹವನ್ ವಗೈರಾ ಕರ ರಹೇ ಥೆ ತೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಿ ಜೊ ಕಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ದೈತ್ಯೋ ಕಿ ತರಫ್ ಭೀ ಥಾ ಉನ್ಕಿ ಮದರ್ ಕಿ ಸೈಡ್ ಸೆ, ತೋ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಫಿರ್ ವೋ ಕುಛ ಹವನ್ ಮೇ ಐಸಿ ಆಹುತಿಯಾಂ ದಿ ಜೊ ಕಿ ಕುಛ ದೇವತಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ದೈತ್ಯೋ ಕೋ ಭೀ ಉಸ್ಮೇ ಲಾಭ ಮಿಲಾ. ಯೇ ಬಾತ್ ಇಂದ್ರ ಕೋ ಪತಾ ಚಲಿ, ಇಂದ್ರ ನೆ ತುರಂತ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಾ ವಧ ಕರ ದಿಯಾ. ವಿಶ್ವರೂಪ ಕೆ ತೀನ್ ಮುಖ ಥೆ ಔರ್ ಬಹುತ್ ವೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಜ್ಞಾನಿ ಥೆ. ತೋ ಉನ್ಕಾ ಜಬ್ ವಧ ಹೋ ಗಯಾ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಪಿತಾ ತ್ವಷ್ಟಾ ಕೋ ಬಹುತ್ ಕ್ರೋಧ ಆಯಾ. ತ್ವಷ್ಟಾ ನೆ ಫಿರ್ ಯೇ ಏಕ ಯಜ್ಞ ಕಿಯಾ. ಉಸ್ ಯಜ್ಞ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಯೇ ಫೈಸಲಾ ಥಾ ಕಿ ಭೈ ಪ್ಲಾನ್ ಥಾ ಕಿ ಏಕ ಐಸಾ ದೈತ್ಯ ಹಮ್ ಲೋಗ ಪೈದಾ ಕರೆಂಗೆ ಜೋ ಇಂದ್ರ ಕೋ ಮಾರೇಗಾ. ತೋ ಗಲತ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರನೆ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಕಿ ಇಂದ್ರ ಜಬ್ ಯಜ್ಞ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ ತೋ ತ್ವಷ್ಟಾ ನೆ ಜೋ ಯಜ್ಞ ಮೇ ಇಂದ್ರ ಶತ್ರು ಇಸ್ಕಾ ಜೋ ಉಚ್ಚಾರಣ ಥಾ ವೋ ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಕಿಯಾ ಕಿ ಉಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಯೇ ನಿಕ್ಲಾ ಗಲತ್ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕೆ ಕಾರಣ ಕಿ ಇಂದ್ರ ಶತ್ರು ತೋ ಇಂದ್ರ ಕೋ ಮಾರೇ ಚಾಹತೆ ತೋ ವೋ ಯೇ ಥೆ, ಲೇಕಿನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಯೇ ನಿಕ್ಲಾ ಯಜ್ಞ ಕಾ ಪರಿಣಾಮ ಯೇ ಹೋ ಕಿ ಜೋ ಇಂದ್ರ ದ್ವಾರಾ ಮಾರಾ ಜಾಯೆ. ತೋ ಫೈನಲಿ ವೃತಾಸುರ ಕಾ ಉಸ್ಮೇ ಸೆ ಅಗ್ನಿ ಸೆ ಪ್ರಕಟ ಹುವಾ ವೃತಾಸುರ, ಪೂರಾ ಆಸಮಾನ ಮೇ ವೋ ಇತ್ನಾ ಬಡಾ ಉನ್ಕಾ ಆಕಾರ ಥಾ ಕಿ ಪೂರಾ ಆಸಮಾನ ಢಕ್ ಗಯಾ. ಔರ್ ದೇವತಾಂ ಕಿ ಸೇನಾ ಭಾಗನೆ ಲಗಿ, ತೋ ಫಿರ್ ದೇವತಾ ಲೋಗ ಭಾಗ ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಜಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಗಯೇ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ನೆ ಉನ್ಕೋ ಬತಾಯಾ ಕಿ ಭೈ ದೇಖೋ ತುಮಾರಾ ಜೋ ಯೇ ಸಮಸ್ಯಾ ಕಾ ಸಮಾಧಾನ ಹೈ ವೃತಾಸುರ ಕಾ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಸಮಾ ಜೊ ಮಾರನಾ ಹೈ ವೋ ಇತ್ನಾ ಸಂಭವ ನಹೀ ಹೈ, ಇತ್ನಾ ಆಸಾನ್ ನಹೀ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ದಧೀಚಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಓ. ದಧೀಚಿ ಜೊ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಹಡ್ಡಿಯೋ ಕೋ ಉನ್ಕಿ ಉನ್ಕಾ ಶರೀರ ವಜ್ರ ಜೈಸಾ ಹೈ, ಔರ್ ಉನ್ಕೋ ಜೊ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ಕವಚ ಉನ್ಕೆ ಊಪರ್ ಹೈ. ತೋ ಉನ್ಕಿ ಹಡ್ಡಿಯಾಂ ಅಗರ್ ಆಪ್ಕೋ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇ ತೋ ವಜ್ರ ಕಿ ತರಹ ಕಾಮ ಕರೆಂಗಿ, ಔರ್ ವೋ ಆಪ್ ದಧೀಚಿ ಜಾಕೆ ಮಾಂಗೋ. ತೋ ದಧೀಚಿ ಸೆ ಮಾಂಗನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಬ್ ವೋ ಗಯೇ ದೇವತಾ ಲೋಗ, ತೋ ವಹಾಂ ದಧೀಚಿ ನೆ ಥೋಡಾ ಉನ್ಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಯಾ. ದಧೀಚಿ ನೆ ಥೋಡಾ ಟ್ರಿಕ್ ಕಿಯಾ ಉನ್ಕೋ ಕೆ ಭೈ ಬತಾವೋ ಕ್ಯಾ ಮತಲಬ್ ಆಪ್ ಮಾಂಗನೆ ಆಯೇ ಹೋ, ತೋ ಕೋಯಿ ಅಪ್ನಿ ಹಡ್ಡಿಯಾಂ ಕ್ಯೋ ದೇಗಾ, ಕ್ಯೋ ಕೋಯಿ ಕಿಸಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮರೇಗಾ. आज तो हम लोग सब लोग, मेरे लिए क्या हुआ, मुझे क्या मिला, मैंने क्या खाया, मेरे लिए क्या है दुनिया में, अपने शरीर, अपने भोग, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम लोग रात दिन लगे रहते हैं। तो ऐसे में तुम किसी के पास जाओगे, भाई साहब आप अपने शरीर को छोड़ दें, आपकी हड्डियां जो है, हमें विष्णु जी ने इन्फॉर्म किया कि आपकी हड्डियां हमारे लिए काम आएंगी ताकि हम राज्य में बैठ के अप्सराओं का डांस देख सकें। कोई मानेगा इस बात को कि इंद्र भगवान, आप इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, अपना अपना देखो क्या इंजाम आपको करना है, कैसे आप जीतेंगे, मेरी हड्डियां लेने चले आए, मैं इसी काम के लिए बैठा हूं यहां पे? तो लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ठीक है आप लेना, क्योंकि परमारथ के कारण साधुन धराशे नदी न संचय, क्या है वो, वृक्ष न भक्षति फल सदा, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धराशे। तो ये जो परमार्थ, लोक कल्याण के लिए ही साधुओं का आविर्भाव होता है। साधुओं के मन में बस एक ही प्रश्न रहता है, कैसे लोक कल्याण हो। जैसे कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए और उनके लीडर कौन थे, शौनक ऋषि, और किनको वो पूछ रहे थे, सूत गोस्वामी। अब प्रश्न क्या थे, 6 सवाल उन लोगों ने पूछे थे, और वो क्यों सब इकट्ठा हुए, क्योंकि वो करीब 1-2 हजार साल से हवन करने में लगे हुए थे, यज्ञों में लगे हुए थे, और इतना यज्ञ का धुआं हुआ कि उनके शरीर काले पड़ गए, इतना यज्ञ उन्होंने किया। और जब उन्हें पता, उन्हें जब सूत गोस्वामी के का दर्शन उन्हें हुए, तो सब लोग इकट्ठा हुए, तो शौनक ऋषि जी ने सब ऋषियों को रिप्रेजेंट करते हुए, उनको बात को रखते हुए कहा कि महाराज कलयुग आने वाला है, लोग मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य अल्पायुषा, लोग कम उम्र के होंगे, कम उम्र में रोग लगेंगे, बाप के सामने बेटे की मृत्यु हो जाएगी, शरीर के रोग भयंकर होंगे, असाध्य होंगे, लोगों की आयु, लोगों की स्मरण शक्ति इतनी कम होगी कि वो कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे, हर चीज उनके लिए वो कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में, मेमोरी में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी चीज भी, जैसे कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो यही कहते हैं कि आप लोग ये गुणा भाग जबानी कैसे कर लेते हो, हमें तो कैलकुलेटर चाहिए, तो वो मोबाइल में निकाल के कैलकुलेटर से करके तो छोटी छोटी गुणा भाग भी नहीं कर पाते हैं। तो उस समय में सारे ऋषि इकट्ठा हुए, उन लोगों ने सूत गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा कि कैसे लोक कल्याण हो, और भी सवाल थे, मेन तो ये था कि इस कलयुग के समय में क्या हम लोग करें, क्या लोगों को रेकमेंड करें, क्या लोगों को बताएं करना चाहिए। तो तब सूत गोस्वामी ने पूरा वृत्तांत जो उन्होंने सुना था सुखदेव गोस्वामी से, जब परीक्षित महाराज के श्राप के समय वो उपस्थित थे, वहाँ कथा चली भागवत की, तो उन्होंने उस सारी कथा को सुनाया, और बस सार उसका यही है कि जो कलयुग में बहुत पाप हैं, बहुत कुछ गलत है, तो खलौ परीक्षित महाराज बहुत दुखी हुए जब, तो कहा कि भाई कलयुग में इतना सब कुछ होगा तो लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कृष्ण स्वधामोपगत है धर्म ज्ञान आदि भी सा, कृष्ण भगवान अपने धाम चले गए, धर्म और ज्ञान के साथ चले गए, कलौ दष्ट नशा में से पुराण को भगवान भागवत पुराण में स्थापित है। और कलयुग में जब परीक्षित महाराज ने ये सवाल पूछा कि महाराज कलयुग आ रहा है और कैसे लोगों का कल्याण होगा और इतना पाप होगा चारों तरफ, इतनी गंदगी होगी, आज भक्त लोग, भक्तों का समाज, हम लोग इस कौन में और दूसरे भी भक्त लोग जो हैं इस लाइन पे हैं, जो समाज को दिशा देने में लगे हुए हैं, शिला प्रभुपाद जी ने हम सबको ये इतना बड़ा साम्राज्य इस कौन का दिया, और आज इतना सब कुछ हम लोग देखते हैं, इतना भागवत जगह जगह हो रही है, मंदिर जगह जगह खुल रहे हैं, इस सब शिला प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी कि गली गली नगर आदि सर्वत्र होए मरना, चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा था, उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए शिला प्रभुपाद जी का आगमन इस धरती पर हुआ। शिला प्रभुपाद जी ने, उनको मालूम था कि ये सब कुछ पहले से निर्धारित है, ये होके रहेगा, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण का निमित मात्र भव सभ्य साची, अर्जुन तो निमित मात्र बन जाओ, ये सब लोग जो यहां आए हुए लड़ने के लिए कोई वापस नहीं जाएगा अपने घर। ऐसे ही प्रभुपाद जी को मालूम था और हम लोगों को आज मालूम है कि आज भी कोई देश, कोई कोना, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां भक्त ना रहते हो। और एक एक भक्त की कितनी पावर है कि वो भक्त लोग वहां इस्कॉन के 600-700 मंदिर तो हैं ही, उसके अलावा जो वो छोटे छोटे नाम हट हैं हजारों लाखों घर घर में, पता नहीं कितने भक्त लोग बॉम्बे के अंदर अगर 8-10 सेंट मंदिर हैं तो उसके अलावा वहां जो उनके नाम हट के का 30-40 नाम हट के कार्यक्रम चल रहे हैं गली गली, क्योंकि भक्त लोग प्रचार में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे ही ये जो कलयुग का समय है, इस समय में जो ये इनका सवाल था शौनकादि ऋषियों का, इनका यही प्रश्न था कैसे कल्याण होगा। तो वही परीक्षित महाराज ने पूछा था, तो उसका जवाब यही था कि कहा उन्होंने कि खलौ दोष निधे राजन, ओ किंग, ओ राजन, परीक्षित महाराज, कलयुग दोष निधे, कलयुग जो है वो दोषों की, फॉल्ट्स की, कमियों की निधि, समुद्र है। यहां हर आदमी के अंदर फॉल्ट है, कोई भी कार्य परफेक्टली हम लोग नहीं कर सकते। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महत गुणा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, कीर्तना दिए वे कृष्ण से मुक्त संगा परम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कलयुग में ऐसा वरदान, ऐसा अमृत भगवान ने दिया है अपने नाम के रूप में कि इस अमृत पान को करने से सारे दोष अपने भी और समाज के भी और लोगों के भी सब शांत हो सकते हैं। क्योंकि कलि संतान उपनिषद में भी कहा है, इति षोडश कम नाम, 16 शब्दों से बना हुआ ये मंत्र, कलि कलमश नाशनम, कलियुग के समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है। नता परतर उपाय, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। कौन कह रहे हैं ये बात? व्यासदेव। और व्यासदेव कौन है? सारे वेदों के रचयिता है, उन्होंने ही वेदों की रचना की, उन्होंने ही पुराणों की, इतिहास महाभारत, और उन्होंने ये कलि संतान उपनिषद लिखा। और वो खुद कह रहे हैं कि कलयुग में बस ये 16 शब्दों का मंत्र, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देखने के बाद वेदों के रचयिता खुद व्यासदेव ये कह रहे हैं कि इस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बस ये मंत्र है, ये नाम है, लेकिन मुझे इसमें नाम में अनुराग नहीं। वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्णा है, भगवान है, लेकिन वो अपनी आचरिते प्रभु जीव रह सिखाए, जीव को प्रभु ने खुद अपने आचरण से ये ज्ञान दिया कि कलयुग के युग धर्म की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म को दिया पूरे संसार को। जब भारत में शासन था मुगलों का, उस जमाने में पूरा भारत भक्ति आंदोलन में था, भक्ति के जो आंदोलन, जो ये मूवमेंट 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, श्रील प्रभुपाद जी ने उसी आंदोलन को, हरे कृष्णा मूवमेंट को, उसी हरे कृष्णा मूवमेंट को, चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट को आगे बढ़ाया। भक्ति सिद्धांत जी का जो प्लान था कि विदेशों में प्रचार हो, प्रसार हो भगवत भक्ति का, वो प्रभुपाद जी ने उनके उद्देश्य को, उनके प्लान को, उनके जो उनका विचार, जो उनका सोचना था, जो उनका ताकि पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की वाणी जगह जगह जाए, ये प्रभुपाद जी ने किया। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज हम लोग यहाँ वृंदावन जैसे सुप्रीम, जो सबसे बड़ा धाम है, पूरी सारे धामों का धाम, जैसे और तो तीर्थ होंगे लेकिन ये तीर्थों का सबका सब तीर्थों का धाम में यहाँ पे वास है। तो ये धाम की महिमा है। और यहां पे और जो बातें आई वो ये है कि किस तरीके से सेना को शत विक्षत करने के लिए देवताओं ने, असुरों ने देवताओं के ऊपर तरह तरह से ये अटैक किया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो संरक्षित थे। संरक्षित किससे थे? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने उनको कहा, तो फिर दधीचि की हड्डियों को लेके उन्होंने ये एक यंत्र का निर्माण किया, उसको वज्र जो इंद्र को मिला। तो इंद्र और वतासुर में जब ये युद्ध चल रहा है तो यहां पे इस पॉइंट पे 28वें श्लोक में जो ये बात आई कि इस तरह से वो युद्ध चला कि जैसे जो भी प्रहार, जो भी हथियारों का इस्तेमाल असुरों ने किया देवताओं के ऊपर, उनका उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो उसका उदाहरण यहां श्लोक में दिया गया है कि जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे आरोप लगाते हैं, दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं, तो संत लोगों की महिमा कम नहीं होती। ऐसे ही कई बार आज समाज में हम देखते हैं कि लोग इतना विरुद्ध कई बार व्यवहार करते हैं कि भगवद गीता, ये भगवद नाम, इनके बारे में लोग, इससे क्या होगा, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, जैसे कि कई बार मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चे सुनना चाहते हैं। मैंने नोट किया कि भगवद गीता की क्लास में बच्चों की लाइन लगी हुई है, उनको रोकने वाले कौन है मालूम है? उनको कौन रोक रहा है क्लास में आने से मालूम है? मैं सच्ची बात बता रहा हूं, टीचर्स, अभिभावक, मां बाप और गुरु। आज के सो कॉल्ड बच्चों को भगवद गीता में कहते क्या मिलेगा? कोई पैसा तो नहीं मिलेगा इसको पढ़ने के बाद। ये नाम धन है, कौन बताएगा इन लोगों को? कृष्णा नाम धन, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। प्रहलाद महाराज ने कहा, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग जानते नहीं कि उनका स्वार्थ, उनका बेस्ट वेलफेयर गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु कृष्णा की शरण में जाने में सबसे। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाम वही अर्थ जे मानी न। दुरा आश्रय, दुरा मतलब बुरा, बैड। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि बही अर्थ, दुराशय आजे बही अर्थ। बही अर्थ का मतलब है कि प्रभुपाद जी ने बताया कि एक्सटर्नल बही, बाह्य चीजों में ध्यान लगा लिया, शरण ले ली, आश्रय ले लिया बाह्य चीजों में कि ये बाह्य भौतिक वस्तुएं मुझे सुख देंगी, मुझे इससे, इसमें मेरा कल्याण है। ऐसी भावना है कि पैसा आएगा तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के साधन में जुटा पाऊंगा, ये जीवन का उद्देश्य बना ली। दुराशया जे भई अर्थ मानी ना, मान लिया कि बस ये जो भौतिक संसार है इसी को गौरंगा बोली मंजिलो संसार सुख है। जो मंजिल, जो भगवान का नाम लेने के बजाय संसार के इस सुख में शरण ले ली, आश्रय ले लिया, दुराशय। अंधा गतांधे रूप नियमाना ते पिशुतांत्र उदामिनी बद्धा। अभी वही तो बात हो गई कि अंधे को अंधा लीड कर रहा है। जितने भी ये श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि ये जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, स्लॉटर हाउस हैं, बच्चों को काट काट के खत्म कर रहे हैं। क्या मेंटेलिटी आज समाज की है? क्या लोग आज जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, क्या उनका चरित्र है? लोग कहते हैं बस हमें हमारा एंजॉयमेंट के साधन नेता, अभिनेता, गुरु, टीचर, सो कॉल्ड कोई भी, बस हमें हमारे एंजॉयमेंट की चीजें दे दें, बहुत बढ़िया है। लेकिन भगवान का नाम, क्योंकि ये शरीर अंतवत्तु इमे देह, जो कि दधीचि ने कहा दादी जी ने कहा कि मुझे मालूम है ये शरीर तो खत्म होना ही है, कीड़े मकोड़ों का भोजन बनना है, ये शरीर को तो कोई रोक नहीं सकता, मरने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकी, आज तक जो आया है वो जाएगा। जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी तो ये कहा कि जिस चीज को हम पकड़ के रखना चाहते हैं कि ये शरीर हमारा साथ देगा, ये देगा नहीं। पराभवस्तावद अबोध जाता यावन जिज्ञासम आत्म तत्वम। पराभव, हमारी हार, हमारी डिफीट निश्चित है, क्योंकि जिस चीज को हम पकड़ना चाहते हैं सारी दुनिया जानती है, सारे वेद जानते हैं कि कोई बचा नहीं। जब कोई बचा नहीं इस संसार के खेल का, एंड डेथ, बर्थ, लेटर है ए बी सी डी, तो बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ और उसके बीच में एक सी, जन्म और मृत्यु के बीच में एक सी है, बर्थ और डेथ के बीच में एक सी है। सी का मतलब चॉइसेस है, जो हम लोग चुनते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। मैं बच्चों को यही बताता हूं कि वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि जो भगवद गीता की क्लास में आए, भगवद गीता के प्रवचन में आके बैठे, और आज वो बच्चे सेव हो गए हैं, वो बच्चे बचा लिए गए। किस चीज से बचा लिए गए? उन गुरुओं से, उन अभिभावकों से, जो बच्चे को ये सिखाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, जो कि प्रहलाद महाराज की क्लास में, जब प्रहलाद महाराज क्लास में 5 साल के पहुंचे तो उन्होंने इंटरवल के लंच के टाइम पे अपना भगवान का नाम और प्रवचन शुरू किया, तो उनके साथियों ने कहा प्रहलाद ये क्या, खाओ पियो ऐश करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवम सुखम जीवेत, अस्य भस्मस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। बैग बोरो स्टील, चरवक मुनि ने बताया, वो फिलोसफी दैत्यों की है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्रेडिट ले लो, बैंक से लोन ले लो, किसी का मार लो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, एंजॉय करो। यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जियो एंजॉय करो, इंद्रियों की लिप्राल माने का सुखम एंद्रिकम तुच्छम। दैत्यों मेरे, माय डियर दैत्य मित्रों, ये इंद्रियों का सुख तुच्छ है। क्यों, कब तक इन इंद्रियों को बचा के रखोगे, कब तक ये शरीर तुम्हारा साथ देगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग बाद में भगवान का नाम ले लेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा नो 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 नो, कौमारमाचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म अध्रुवम तदपि अर्थदम। कौमारमाचरेत प्रज्ञा, बचपन से, आज हमारे इस्कॉन में, मंदिरों में माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो आज इस्कॉन के माँ बाप जूझ रहे हैं कि बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाए, क्योंकि अगर ये प्रोसेस और ये भक्ति का मार्ग हम लोगों ने बच्चों को नहीं दिया तो जो भी कुछ किया सब बेकार किया। इसीलिए प्रभुपाद जी ने गुरुकुल बनाए, इसीलिए प्रभुपाद जी ने बच्चों के लिए प्रोग्राम डेवलप किए, वर्णाश्रम को रखना चाहा, ऐसे ऐसे कम्युनिटी बनानी चाहिए जहां, और बनी भी है, जहां बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम हैं, बच्चों के लिए स्कूल हैं, बच्चों के लिए तरह तरह के नृत्य नाटिकाएं वगैरह इस तरह से अरेंज की जाती है उनकी, उस तरह की अपने कल्चर को समझने के लिए। जब मैं पढ़ाता हूं तो महाभारत की कथा का धृष्टद्युम्न का पूछता हूं धृष्टद्युम्न कौन था, तो बच्चे नहीं बता पाते, 20-20 साल के बच्चे हैं, नहीं बता पाते धृष्टद्युम्न कौन था। सच्ची बात है ये, मैं अपनी आपबीती बता रहा हूं जो मैं देख रहा हूं, ये समाज आज किस दिशा में है। तो यहां पे दधीची ने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपना योग माया से अपने शरीर को छोड़ा, हड्डियों को इंद्र ने लिया, वज्र बना, वृत्रासुर से युद्ध हुआ, अब वृत्रासुर से जो युद्ध चल रहा है तो जो ये सेना थी, जब देखा कि सेना देवताओं के ऊपर उनके सारे हथियार खंडित कर दिए, और उसकी एनालॉजी दी है यहां पे कि जैसे कोई तुच्छ आदमी, तुच्छ का मतलब इनसिग्निफिकेंट, जब बहुत जैसे कोई ज्ञान नहीं है, किसी को मालूम नहीं है क्या जीवन है, क्या मतलब है। जैसे कि एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि वो ट्रेन में थे, मैंने ट्रेन तक में देखा, ट्रेन में अगर भगवा कपड़ों में कोई भक्त ट्रेन में चढ़ते हैं तो अभी इन लोग भारत जैसा देश और लोग उनको, कई बार जो समझदार लोग हैं वो आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, जो जानते नहीं कि भगवा कपड़ों का क्या महत्व है, भगवा कपड़ों में जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनका कितना बड़ा सम्मान होना चाहिए, उनका कितना बड़ा त्याग है, कितना उन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया भगवान के लिए, सब कुछ छोड़ दिया, उनको कितना उनको पूजनीय है। समाज में ज्ञान नहीं है, नहीं तो जो सैफरन कपड़ों में अगर कोई चला हुआ आ रहा है ब्रह्मचारी या सन्यासी, लोग नतमस्तक हो जाने चाहिए, लेकिन सब लोगों को इतना ज्ञान नहीं, काफी लोगों को है लेकिन लोगों को नहीं है। इसी ज्ञान को देना है, इसी चीज को बताना है कि जिन लोगों ने भगवान के रास्ते में जो चले, अब अगर ये कुछ जैसे कि राधा गोविंद महाराज की मैं बात बता रहा था, बता रहे थे कि वो ट्रेन में चढ़े भक्तों के साथ में, तो भक्त लोग हंसने लगे और ऐसे कहने लगे कि अरे भाई आपके स्वामी जी कुछ बोलते नहीं है, ऐसे कर करके कमेंट शुरू कर दिए। तो महाराज ने कहा ठीक है हम बोलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा भगवान का कीर्तन करेंगे। अब महाराज ने भक्तों के साथ में कीर्तन को शुरू कर दिया ट्रेन के अंदर ही, और कीर्तन जब चला और कीर्तन में जब भगवान का नाम चला तो वो सब लोग तालियां बजाने लगे, ताली बजाने से उनके पाप हटे, उनकी बुद्धि शुद्ध हुई, और तब वो फिर महाराज को उन्होंने कुछ सुना। तो क्या इसका तात्पर्य है कि हम लोगों को हरि नाम का संकीर्तन करना है, गली गली में जाना है, प्रचार करना है, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोग मंद बुद्धि, कोई सुनना नहीं चाहता। हम लोग जब, मुझे याद है कि जब हम लोग हरिनाम पे निकलते थे अमेरिका में, तो वहाँ पे लोग अच्छे हैं, एक सेंस में अच्छे ये हैं कि ठीक है ये लोग अपना कुछ, अब क्या इनका है हमें मालूम नहीं, किस तरह के अजीब से कपड़े हैं, ये तिलक है, ये सब चीज़ें हैं, चोटी है, उनकी पता नहीं चलता, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि ठीक है भाई ये लोग जो भी कर रहे हैं इनकी बात सुनो, देखो क्या चीज़ है। तो कई बार वो किताब ले लेते हैं, कई बार वो कीर्तन में तुम्हारे साथ में ऐसे करने लगते हैं, कई बार वो क्लैपिंग करते हैं, कई बार वो आके खड़े हो जाते हैं, अपना कोई इंस्ट्रूमेंट तो उसको बजाने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके पायस क्रेडिट्स में चली जाती हैं, क्योंकि जो भी शरणवताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की कथा कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन, इतना पायटी, इतने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं भगवान की कथा सुनने मात्र से। भागवत में नित्यम भागवत सेवया, इसलिए हम लोग यहां इकट्ठा होते हैं हर सुबह, ये चैंटिंग करते हैं, ये कथा को सुनते हैं, क्योंकि हृदय तो स्थुई अभद्राणी, हमारे हृदय में अभद्र, इनऑस्पिशियस, अनवांटेड, जो नहीं होने चाहिए हमारे हृदय में विचार, वो बैठे हुए हैं। और बैठे क्यों हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल, जो बुरे कर्मों का फल जो हमें मिला, वो दो तरीके से मिला, एक तो उसी जन्म में निकल गया और एक जो इस जन्म में आया, वो तीन तरीके से, कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो हमारे कुछ बीज के रूप में हृदय में गलत बातें बैठी हुई हैं, प्रायश्चित से कुछ नहीं हो सकता। हाथी जैसे कुंजर शौचवम, परीक्षित महाराज ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को कि जो ये प्रायश्चित है ये कुंजर शौचवम की तरह है, हाथी के स्नान की तरह है, हाथी नदी में जाता है स्नान करता है मिट्टी फेंक लगता बाहर आके। तो ऐसे ही जो पाप का बीज है उसका नाश प्रायश्चित नहीं कर सकता, उस बीज का नाश हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, उस बीज का नाश ये मंत्र करेगा, क्योंकि ब्रह्मा नहीं, स्तुति में भगवान की कहा ब्रह्म संहिता में कि इंद्र से लेके इंद्र गोपा जो गोबर में रहने वाला कीड़ा है, दोनों को अपने कर्मों के रास्ते से जाना पड़ेगा। जो कर्म किया है उसका फल भुगतना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। ये लॉज ऑफ नेचर है, ये प्रकृति के नियम है, इस नियम से कोई परे नहीं है। चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे इंद्र है और चाहे इंद्र गोपा है। कर्मानुरूपमपि, कर्मा और कर्म और जो लोग भक्त हैं किंतु भक्ति भाजान, कर्मान निर्दहते किंतु च भक्ति भाजान। लेकिन जिन लोगों ने भक्ति भजन में अपना ध्यान लगा लिया है, उनके पुराने कर्मों की जो प्रतिक्रिया है वो उस भजन की यज्ञ की अग्नि में जल के राख हो जाती है। तो इससे बड़ा क्या, कल को क्या मुझे दिन देखना पड़ेगा, क्या मेरे जीवन में होगा, क्या मेरे शरीर के साथ होगा, क्या मेरे समाज में, कैसे मैं, इतनी सारी चीजें हमारे मन में घूमती रहती है। इतना डर, इतना भय, इतनी चिंता, इतनी कुंठा, ये सब का इलाज, इस सब का जो ये हम लोग अगर ये हरे कृष्ण मंत्र को करते हैं, जपा करते हैं, तो यही बात है। शरणवताम सौकेता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तो स्थोई अभद्राणी, जो अभद्र चीज है, इनऑस्पिशियस अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए। शराब किसी से कोई मर नहीं रहा है बगैर शराब के, कोई गलत सिगरेट और ये व्यसन की चीज, इनसे कोई कुछ शरीर का नाश ही होता है। लोग मर रहे हैं वैसे ही, उस मरने की क्रिया को और एक्सेलरेट और तेज कर दे, उत्प्रेरक का काम करती है सिगरेट और शराब, ये चीजें मरने के इस प्रोसेस को और तेज कर देती हैं। जो मर रहा है वो और अच्छी तरह जल्दी से मर जाए, ये है सब, ये सिगरेट शराब और ये वातावरण जो गंदगी हवा में और पानी में हो चुकी। जैसे हम लोग इंजीनियर्स के साथ में काम करते हैं कि जल और वायु प्रदूषण, एयर एंड वाटर पोल्यूशन के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, हैजार्डस पे, इतना कुछ। आज घर घर में कैंसर है, घर घर में कैंसर। एक बार अमेरिका में हनुमान स्वामी ने कहा कि सब लोग बैठे हुए थे प्रोग्राम में, तो यही कहा कि बताओ ऐसा कोई यहाँ पे है जिसके घर में किसी की कैंसर से डेथ ना हुई हो, हाथ उठाओ। तो एक भी हाथ नहीं उठा, सबके घर में कैंसर से डेथ हुई थी। क्यों? क्योंकि शराब, मांस, इन सब की रिएक्शन वहीं से। जैसे कि लोगों से बात करता था तो बताता था कि भाई गाय का मांस हमें नहीं खाना चाहिए, तो लोग सब कुछ, मतलब कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं वहां इंडिया में भी, अब तो लोग कुत्ता वगैरह रखने लगे, तो छोटे छोटे कुत्ते को लेके गोद में लेके घूमते हैं और सेम प्लेट में कुत्ता खाता है उसी प्लेट में वो, आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सेम प्लेट। कैन यू इमेजिन, कितना, कौन बताएगा ये सब, कौन समझाएगा ये सब उनको कि ये क्या जीवन है, ये क्या। और हम लोग भारत भूमि जन्म हो ले यार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। भारत भूमि का जन्म महान है, हजारों हजारों जन्मों के बाद 84 लाख योनियां, जलजा नवलखान स्थावरा ने एक विंशति, 9 लाख एक्वाटिक्स जलजा हैं, जल में रहने वाले जल के जीव हैं, ये सब काउंटिंग है। तो इन सब में 84 लाख में 80 लाख तो इन्हीं में, 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं, तो 4 लाख योनि किन्नर, गंधर्व, देवता, दैत्य, दानव, ये सब मनुष्य वाली कैटेगरी में है। लेकिन 4 लाख में जो ऊपर टॉप के 10-20 मनुष्यों की जो योनियां हैं, हम उनमें से होंगे। अब आप देख लो कि चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्णा 525 साल पहले वेस्ट बंगाल में आए, हरे कृष्णा मंत्र का उन्होंने उद्घाटन किया, उसको रिस्टैब्लिश किया, सबको बताया। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी, गोस्वामी जी की परंपरा में हमारे गौड़िया मठ के भक्ति विनोद ठाकुर या गौर किशोर दास, या उससे पहले जगन्नाथ दास बाबा जी, गौरकिशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, और उसके बाद भक्ति जान जी, और फिर प्रभुपाद जी, और फिर हम लोग। कितना क्लोज कनेक्शन। आप हम लोग 84 लाख में बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके। भारत में जन्म हुआ, ये भगवान का नाम हमारे खून के अंदर है, और इतना पास, इतना सब कुछ इसी जन्म में इस काम को समाप्त कर देना। जन्म मरण के चक्कर को रोक देना है। ये प्रण, ये विश्वास, ये हमारा आज का ये सोच है कि दूसरा जन्म लेना नहीं। और जितना भी इस जन्म सार्थक करिए, जब तक हम इस दुनिया में हैं, समाज में हैं, देश में हैं, हमारा आज्ञा गुरु ही है। तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिस भी जगह बैठ जाओ, इवन कल मैं कन्वोकेशन है आज जीएलई यूनिवर्सिटी में, तो वहां मैं खड़ा हुआ था, तो वाइस चांसलर आए तो बोले सबके सामने, हाँ भाई हरे कृष्णा कैसा चल रहा है। तो देखने से उन्होंने हरे कृष्णा कहा, वहां करीब 50 प्रोफेसर बड़े बड़े खड़े हुए थे, वो सब भी हरे कृष्णा बोलने लगे। तो पॉइंट कहने का यह है कि भक्त लोगों को अपनी एक पहचान को बना के रखना है कि हम भगवान के भक्त, हम सिर्फ भगवान की बात करते हैं। हमें कोई भी चीज जो भगवान के कनेक्शन में हो उसके बारे में बड़ा रस आएगा, बाकी चीजों में लोग साइलेंट हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों को सिकोड़ के कान वान सब बंद के योग माया से हम लोग अपने नाक कान आंख सब बंद कर लेते हैं, कहीं कुछ हो रहा है कोई, जिसकी बहुत चीजें होती रहती है समाज में, देश में, ट्रेन में जाओ, बसों में जाओ, सड़कों पर निकलो, बहुत कुछ गंदगी है चारों तरफ, लेकिन अपनी योग माया से अपने सब आंख नाक कान सब बंद करके सिकोड़ के अपना भगवान के नाम में ध्यान लगाते हैं, और ये सोचते रहते हैं कि ये कैसे ये नाम कोई ऐसी तरकीब निकले कोई, क्योंकि अभी महाराज आए हुए थे, मैं नाम भूल गया, उन्होंने प्रवचन किया, तो नाम मुझे याद आ जाएगा, तो उनके प्रवचन उन्होंने यही बताया कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता तो मैंने बहुत मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की, एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरी माँ मुझे कहती थी, तो मैंने बहुत प्रयास किया, इतना एफर्ट किया, रात दिन पढ़ा, तो ऐसे ही महाराज ने कहा, ऐसे ही हम लोगों को भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के नाम का गुणगान और दूसरों को बताने में भी इतनी ही जान लगानी है, इतना ही प्रयास करना है कि कोई भी जरा सी कहीं भी जरा सा छेद भी दिखाई दे कि यहां से भगवान का नाम जा सकता है, वहीं छेद से भगवान का नाम निकाल दो। इतना फोकस, इतना हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मौका मिलते ही कहीं भी बैठ जाओ। मैं जैसे किसी एक रिलेटिव थे, कुछ समय पहले की बात है, तो वहाँ उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन में क्लॉट हुआ, तो वो माता जी जो है वो अस्पताल में थी, हम लोग दिल्ली पारसाती मंदिर से उनके लिए चरणामृत लेके भगवान का पहुँचे, अब वहाँ उनको चरणामृत दिया, तुलसी का पत्ता वगैरह दिया, तभी बगल में एक माता जी आई, बोली हाथ जोड़ के, भैया आप लोग मंदिर से आएगा, हरे कृष्णा, वहाँ भाई हरे कृष्ण, बड़ी खुशी हुई आपके दर्शन हुए, जरा सा चरणामृत मेरे हस्बैंड को दे दो, ये भी बेचारे कोमा में, हमने चरणों तुरंत दे दिया। बाद में उनके लड़के ने बताया कि ये कौन है, आप कौन है मालूम है, आप इस कौन से हैं, शिला प्रभुपाद जी की समाधि वृंदावन की के ये कॉन्ट्रैक्टर रहे। प्रभुपाद जी ने चरणामृत वहीं भिजवा दी, उनका शरीर पूरा हुआ वहीं, चरणामृत के बाद कोई लिया नहीं उन्होंने, लेकिन प्रभुपाद जी ने मेक श्योर किया कि मेरी समाधि के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने पैसे भी लिए होंगे, प्योर शुद्ध भक्ति नहीं की, लेकिन चरणामृत वही डिलीवर करा दिया अस्पताल के अंदर। ये प्रभुपाद जी की महिमा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये भगवान कृष्णा का, हरे कृष्णा का ये मूवमेंट 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु के आने से चलेगा, तुम एक कील भी मंदिर में ठोक दोगे भगवान की फोटो टांगने के लिए, तुम बैक टू गॉड चले जाओगे, कील ठोकने मात्र से। इसीलिए मेरा यही हर वक्त ट्रेन में बैठते ही, इसीलिए हम लोग माला टांग के जहां दिखाते हैं माला, लोग आप माला दिखा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, माला दिखाएंगे क्यों नहीं दिखाएंगे, भगवान का नाम ले रहे, भगवान के भक्त हैं, शुद्ध नहीं हुए कोई बात नहीं, देवता लोग भी शुद्ध नहीं थे, भगवान ने पूरा सपोर्ट किया, देवता लोग कहां शुद्ध थे, मेटेरियल डिजायर्स थी, है कोई बात नहीं, हम भी एक दिन शुद्ध होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी या बाद में। यस माता जी। माता जी का प्रश्न है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत के हमारे इस्कॉन में माँ बाप बच्चों को भक्त बनाना चाहते हैं, मंदिर लाते हैं, उनको चैंटिंग सिखाते हैं, और कई बार बच्चे लोग भक्त नहीं बन पाते हैं, तो इसमें माँ बाप का क्या मतलब, माँ बाप को क्या, उनका सोच क्या होनी चाहिए? यही सवाल एग्जैक्टली मैंने करीब ऑलमोस्ट 15-20 साल पुरानी बात है सचिन नंदन महाराज से जुहू के मंदिर में पूछा था, चलते चलते एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो महाराज का जवाब यह था कि तुम लोगों ने बच्चों को जैसे नदी आज सूखी हुई है उसमें जल नहीं है लेकिन बेड तैयार है, जब भी पानी आएगा तो नदी के उसी रास्ते से जाएगा, ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो सीड, जो बीज, जो प्रभाव हमने बच्चों को दिया वो खाली नहीं जाएगा, वो बच्चों पे काम करेगा, आज ही तो कल करेगा, नहीं तो परसों करेगा। जो बच्चे कृष्णा कॉन्शियस, गोपाल कृष्ण महाराज ने एक बार बताया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो बच्चे हमारे घरों में जन्म लेते हैं ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े इम्पर्सनलिस्ट सन्यासी भी हो सकते हैं और ऐसे भक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि चैतन्य भगवद गीता के अंदर अर्जुन ने पूछा हे भगवान क्या वो बच्चा, वो आदमी जो आपके रास्ते से योग भ्रष्ट कि जो आपके रास्ते में आया और प्रोसेस को पूरा करके आपके धाम पे नहीं जा पाया, क्या वो उन बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा जैसे हवा उड़ा देती है? तभी भगवान ने कहा कि शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट भी जाए थे, कि जो योग के पाथ से पूरा नहीं कर पाता वो दो तरीके से वापिस आता है, एक तो वो जो कम एडवांस था लौट के आया तो कहां आएगा, शुचिनाम श्रीमताम गे ऐसे घर में आएगा, गे ऐसे घर में आएगा जहां ऑपुलेंस वेल्थ ब्यूटी पैसा पोजीशन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली टाटा बिरला की यहां, बिरला के यहां आएगा ऐसे, या सिंघानिया के यहां आएगा जहां सुबह ही भगवान की आरती हो रही है और वो पैसे की कोई कमी नहीं है, काम का कुछ करना नहीं है, बस भगवान का नाम और प्रसाद दो ही काम है। और उससे भी जो एडवांस स्टेज में अगर फॉल होकर वापिस आएगा तो वो कहां आएगा, वो इस्कॉन के भक्तों के घरों में आएगा, क्योंकि इस्कॉन के भक्तों के घर में सुबह ही सुबह क्या होता है, जैसे कल मैं फोन पे बात कर रहा था तो किसी प्रोफेसर से, तो वो बोले अच्छा घंटी बज रही है क्या, आरती हो रही है, मैं हाँ आरती का टाइम है शाम का, आपने फोन मिलाया मुझे बीच में, मेरी वाइफ आरती कर रही है, मैं आपकी बात बस वही बाद में कॉल करता हूँ। तो भक्त लोगों के हर क्रियाकलाप में भगवान का कनेक्शन होने के कारण इतना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग अपने व्यवहार से ऐसा इस्कॉन के भक्तों का नाम रोशन करें कि जो भी हमें देखे भाई ये इस्कॉन से हैं और ये चलते फिरते मंदिर की तरह हैं, इन लोगों के आचरण में, इन लोगों के व्यवहार में वो चीज झलकती है कि ये लोग भक्त हैं, ये इस्कॉन के हैं, प्रभुपाद जी का नाम, जैसे कहते हैं ना मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुरा, प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं मेरे नाम को, इस्कॉन के नाम को, भगवान के नाम को रोशन करना है इस्कॉन के भक्तों को। तो ये होगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो इस्कॉन में पैदा होते हैं वो उसको घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात की मतलब अपने उसके उसी वैल्यू को समझते नहीं है कि ये सब चीज कितनी मुश्किल से। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंग्लैंड में जाओ, मैं गया कई बार, तो वहां पे जो बच्चे हैं यूथ हैं वो अपने माँ बाप को प्रीच कर रहे हैं, उनके माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं इंडिया के भी और विदेशों के भी, और उनके बच्चे कह रहे पिताजी मीट मत खाना, वहां पे उल्टा हो रहा है क्योंकि वहां क्योंकि वो यूथ प्रोग्राम में सब भक्त बन गए और उनके माँ बाप पूरे मेटलिस्टिक हैं जैसे कि इंडिया में भी हो रहा है, क्लासेस के अंदर मैं जाता हूँ, बच्चे चाहते हैं कि सर लेकिन मेरे पिताजी मना कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ के क्या करेगा, क्या मिलेगा, टीचर मना कर रहे हैं, क्लास में बच्चे चाहते हैं, 150 बच्चों ने कहा हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, उन्हें सीट नहीं है, 60 सीट है, बस 60 बच्चे पढ़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि बच्चे लाइन लगा रखी है दीन के बाहर के सब, तो लेकिन वो कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, क्लासेज चलती हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। अभी पत्री प्रभु को हम लोग वहां लेके गए थे, 500 स्टूडेंट्स बुलाए, पत्री प्रभु ने जबरदस्त प्रवचन किया हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके, लेकिन इतना पावर बच्चों ने कीर्तन किया उनके साथ में डांस किया, उनको अपना छोटा सा अकॉर्डियन लेके आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में देख रहा था प्रभुपाद जी की आरती के बाद जब कीर्तन हो रहा था, हर आदमी डांस कर रहा था, हर भक्त डांस कर रहा था, क्यों ना करे, क्यों ना डांस करें हम लोग, यही हमारा एंजॉयमेंट है। तद विलास भक्तिया, भगवान का जो ये विलास है, राधा श्याम सुंदर का विलास है, वैभव है इस मंदिर में, हम भक्त लोग हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं भगवान को देख के, उनके डांस में, उनके प्रसाद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस माता, यस माता। तो माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि बच्चों को कैसे हम लोग, जो कि मतलब आज के समाज के हिसाब से वो नहीं ले पा रहे हैं। मैंने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग की है, दोनों बच्चों को होम स्कूलिंग में रेज किया अमेरिका में, और पढ़ाई भी कराई और काफ़ी कुछ इस तरह से, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों को रेज करने में, जो हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं, और ये बात मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ तो यहाँ भी यही बात एप्लीकेबल है कि तुम एक बार अपने लव से बच्चों को ये एहसास करा दो, या किसी को भी तुम एहसास करा दो, आई लव यू, आई केयर यू, सेल्फलेस। जैसे कि एक स्टोरी है, एक बार एक औरत सुसाइड करना चाहती थी, बूढ़ी थी, बहुत बीमारियां थी, मैं मरना चाहती हूँ, बीमारी को दुख में से लिया नहीं जाता, तो रात में उन्होंने 2 बजे विचार बनाया कि वो आज सुसाइड करेंगे। उन्हें सुसाइड करने के पहले अपने साइकेट्रिस्ट को कॉल किया, जिनसे वो प्रेस्क्रिप्शन वगैरह लेती थी, साइकेट्रिस्ट को कॉल किया 2 बजे रात के, साइकेट्रिस्ट ने फोन उठाया, कहा कि मैं मरना चाहती हूँ, मेरा जिंदगी से मोह छूट गया है, मैं बीमारियां हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। तो साइकेट्रिस्ट ने कहा तुम ऐसा करो, थोड़ा सा पानी गर्म करो, पानी पी लो, और उसके बाद में थोड़ा मन को शांत करके थोड़ा एक्सरसाइज करो, कुछ चीज़ें बताइए, 8-10 जो उनके होती हैं। अगले दिन सुबह को उसने कॉल किया उस लेडी को, हेलो, बोली हाँ हेलो, क्या आप जिंदा हो गए, हाँ, क्या आपने सुसाइड नहीं किया रात में, कि नहीं किया, कि क्यों नहीं किया, जो बातें मैंने बताई थी, पानी पियो, ये करो वो करो ये करो, तुमने सब किया ना, मैंने मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि सुसाइड क्यों नहीं किया, सुसाइड इसलिए नहीं किया कि मुझे बहुत लगा कि कोई रात को 2 बजे मेरे फोन को अटेंड करने के लिए जब तैयार है तो मैं क्यों मरूं, क्या जरूरत है मुझे मरने की, जब मुझे कोई इतना मुझे मेरे को इतनी केयर करता है। ऐसे ही आज चाहे तो भक्तों का समाज है चाहे अभक्तों का समाज है, हमें केयर और लव इतना देना है बच्चों को, ज्यादा चाहिए बच्चों को, हर मिनट एप्रिसिएशन रिवॉर्ड्स चाहिए बच्चों को। मेरे कॉलेज में जरा सा भी कोई बच्चा क्लास में, मैं जा कहता हूँ किसी बच्चे को, डांटता हूँ, छोड़ मत करो, चुप बैठो, बच्चा 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है, मैं 1.5 मिनट में ही कह देता हूँ थैंक यू फॉर बीइंग सो साइलेंट, मैं उसको 1.5 मिनट में अप्रिशिएट करता हूँ, इससे पहले कि दोबारा शो करना शुरू करे, मैं उसको 1 मिनट बाद ही अप्रिशिएट कर कह देता हूँ कि बेटा तुमने मेरी बात को रखा, थैंक यू। और किसी बच्चे को पनिशमेंट देता हूँ, तुम खड़े हो जाओ दीवार की तरफ मुंह करके, और फिर 5 मिनट बाद में कह देता हूँ बेटा बैठ जाओ, आई एम सॉरी कि मुझे आपको पनिशमेंट देना पड़ा, मैं देना नहीं चाहता था आपको कभी, मैं आपको वो एक तरीके से सबके सामने आपका हैरासमेंट हुआ, मैं ये भी नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि तुम थोड़ा चुप हो जाओ, तो सॉरी मुझे आपको ऐसे करना पड़ा। तो कहते नहीं सर, नहीं आपने अच्छा किया, ठीक किया आपने, मुझे अच्छा के डांट दिया, मुझे अलग खड़ा कर दिया। तो ये भावना हम लोगों को लेके चलने की, कैसे ऐसी भक्तों के समाज में हम एक दूसरे की ऐसी लव और केयर करें कि कोई भक्त छोड़ के ना जाए, कोई भक्त दूर ना हो जाए, कोई भक्त फॉल्ट किसी का फाइंड करके, हमें भगाना नहीं है, हमें लाना है, सबको जोड़ना है, सबको अपने साथ लेके चलना है, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे देश के बच्चे हों, चाहे क्लास के बच्चे हों, चाहे टीचर हों, सबको एक बार अगर ये विश्वास आ गया यू लव देम, वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। और तुम अगर कहोगे उल्टे लटक जाओ तो उल्टे लटके मिलेंगे अगले दिन सारे के सारे। अगर तुम्हारे एक बार प्यार उन्हें मिल गया तुम्हारे से और तुम्हें लग गया कि तुम बहुत लव करते हो। मैंने देखा हनुमान स्वामी सैन उसे में जो पुजारी था, महाराज 2 बजे उठ के माला कर रहे, पुजारी सेवा पड़ा, आरती का टाइम हो गया, महाराज पुजारी के पैरों की मालिश कर रहे, पैरों की मालिश कर रहे, भक्त बेटा भैया प्रभु जी उठो उठो उठो, पैरों की मालिश कर रहे महाराज। ये नहीं कि अभी तक पड़े सो रहे हो क्या, आरती का टाइम हो गया, नो नो महाराज। तो हमें लव से दूसरों को जोड़ना है, लव से सपोर्ट करना है, अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं है हमारी। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।